آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے انتخابی مہمات زور پکڑ رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سمیت سینئر بی جے پی لیڈروں نے ملک کے مختلف حصوں میں ریلیاں اور روڈ شو منعقد کیے۔ ڈی ایم کے لیڈر ایم کے اسٹالن نے مدورائی میں ریلی کی۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی رہنماؤں نے آسام میں عوامی جلسے کیے۔ دلی ہائی کورٹ نے وزیر اعلی اروند کیجریوال کی اس عذرداری کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے مبینہ شراب پالیسی گھپلے معاملے میں ای ڈی کے ذریعے اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری کونسل کے صدر نے فلسطین کی درخواست کو اپنی نئی رکنیت کے داخلے سے متعلق کمیٹی کو مکمل رکنیت کے لیے بھیج دیا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ مارچ 2024 کا مہینہ ریکارڈ پر سب سے زیادہ گرم مہینہ رہا۔ اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر موسم گرما کے اختتام پر درجہ حرارت میں اضافہ جاری رہتا ہے تو اس کے غیر متوقع نتائج ہوں گے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں پنجاب کنگز اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان چنڈی گڑھ میں میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ بڑی سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ رہنما ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کر رہے ہیں اور اپنے پارٹی امیدواروں کی حمایت میں عوامی ریلیاں اور روڈ شو منعقد کر رہے ہیں۔ سینئر بی جے پی رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام چنئی میں ایک روڈ شو منعقد کر کے تمل ناڈو کے اپنے دو روزہ دورے کا آغاز کیا۔ وہ ایک خصوصی طیارے سے چنئی پہنچے ہیں اور انہوں نے بی جے پی امیدواروں تمل عیسائی سندر راجن، پال کنگراج اور ونوج پی سلوم کے لیے ووٹ دینے کی اپیل کی۔ یہ امیدوار چنئی جنوب، شمال اور وسطی لوک سبھا حلقوں سے چناؤ لڑ رہے ہیں۔ 2 کلومیٹر کا یہ روڈ شو پناگل پارک سے شروع ہوا اور ٹینمپیٹ میں ایلڈنز روڈ پر ختم ہوا۔ جناب مودی کے ہمراہ ریاستی بی جے پی صدر کے اناملائی اور دیگر شخصیتیں بھی تھیں۔ کل ممتاز بی جے پی رہنما جناب مودی کوئمبٹور کے قریب ویلور اور مٹو پلائم میں دو عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ مدورائی میں ایک اور تقریب میں ڈی ایم کے رہنما اور ریاست کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے آئی این ڈی آئی اے اتحاد کے امیدواروں کی حمایت میں مہم میں حصہ لیا۔ مدورائی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ای ڈی اور آئی ٹی کے ذریعے اپوزیشن رہنماؤں کو نشانہ بنانے اور انہیں جیل بھیجنے پر بی جے پی کی تنقید کی۔ جناب اسٹالن نے کہا کہ غیر بی جے پی کے اقتدار والی ریاستوں نے ہمیشہ فنڈز کی کمیابی کے سبب خمیازہ بھگتا ہے۔ انہوں نے 4 سال کی مدت میں اے آئی اے ڈی ایم کے غیر سرگرم رہنے پر بھی اس کی نکتہ چینی کی ہے۔ تمل ناڈو میں اس ماہ کی 19 تاریخ کو 39 لوک سبھا سیٹوں کے لیے پولنگ کرائی جائے گی۔ اس سے پہلے دن میں وزیر اعظم مودی نے مدھیہ پردیش میں بالا گھاٹ کے مقام پر لوگوں سے خطاب کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات 21ویں صدی کے بھارت کے لیے بہت ہی اہم انتخابات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ محض چناؤ نہیں ہے بلکہ ایک نئے بھارت کی تعمیر کا ایک مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کے طریقہ کار پر عمل کر رہی ہے اور ملک کے ہر شہر اور گاؤں کو ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں جدید بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے تانتیا ماما کو اعزاز سے نوازا اور بھگوان برسا منڈا کے یوم پیدائش پر پہلی بار قبائلیوں کے فخریہ دن کا آغاز کیا۔
آج بی جے پی سرکار ایم پی میں 5.5 کروڑ ضرورت مندوں کو مفت راشن دے رہا ہے۔ یہ راشن پانے والے بہت بڑی سنکھیا میں ونچت سماج سے آتے ہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ جن جاتی سماج کے لوگ پیسہ قانون کا لابھ لے رہے ہیں۔ لاکھوں آدیواسی بھائی بہنوں کو ون ادھیکار کا پٹا بھی بھاجپا سرکار نے ہی دیا ہے۔
آسام میں ممتاز رہنماؤں نے ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ریاست پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سینئر رہنما امت شاہ نے آج دوپہر شمالی لکھیم پور میں ایک عوامی جلسے کا انعقاد کیا۔ عام آدمی پارٹی اور کانگریس رہنما بھی آج ریاست میں موجود تھے۔ اتر پردیش میں لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 8 سیٹوں پر 26 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان میں میرٹھ کی اہم سیٹ بھی شامل ہے۔ ایک رپورٹ۔
مغربی اتر پردیش کی میرٹھ لوک سبھا سیٹ میں 5 اسمبلی حلقے ہیں۔ इनमें मेरठ डिस्ट्रिक्ट, मेरठ कैंट, मेरठ किठौर, मेरठ सिटी के 4 असेंबली हल्के और 1 हापुड़ असेंबली का 1 हल्का शामिल है। इस लोकसभा हल्के में मजमूई तौर पर 20,530 राय दहिंदगान हैं। बीजेपी ने अपने 3 बार के रुकने पाले में राजेंद्र अग्रवाल का टिकट मनसूख करके मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम 2 मरतबा तब्दील किया है और हतमी तौर पर साबिक मेयर सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से बीएसपी की तरफ से देवव्रत त्यागी इंतखाब लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने 5,86,184 वोट हासिल करके इस लोकसभा सीट से इंतखाब जीता था। यहां से बीएसपी के हाजी मोहम्मद खान याकूब दूसरे मकाम पर रहे थे, जिन्होंने 5,81,455 वोट हासिल किए थे। दोनों लीडरों के दरमियान कामयाबी और नाकामी का औसत बहुत ही कम था। तमाम पार्टियों ने इस बड़ी अहमियत वाली सीट के लिए इंतखाबी मुहिमों का आगाज कर दिया है। इन नशीद पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लखनऊ से आकाशवाणी न्यूज से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम।
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने आखिरकार सीटों की शराकतदारी के अपने मुआहदे का ऐलान कर दिया है। मुंबई में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के लीडर उद्धव ठाकरे और रियासती कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने रियासत में 48 पार्लियामानी सीटों के लिए सीटों की शराकतदारी के मुआहदे का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी 21 लोकसभा सीटों पर इंतखाब लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर और एनसीपी एसपी 10 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। भारत के इंतखाबी कमीशन ने कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला को बीजेपी लीडर हेमा मालिनी के खिलाफ उनकी गैर मुनासिब बयान के लिए नोटिस जारी किया है। जनाब सुरजेवाला से कहा गया है कि वो अपना जवाब इस महीने की 11 तारीख को शाम 5 बजे तक दाखिल करें। कमीशन ने जनाब सुरजेवाला के बयान को यह कहते हुए नामुनासिब, नाजेबा और गैर महजब करार दिया कि ये हेमा मालिनी के तई वसी गुस्ताखी और खवातीन कानून साजों के वकार की बेहरमती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वजीराला अरविंद केजरीवाल के जरिए दायर करदा उस उजरदारी को आज मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने मुबैना शराब पॉलिसी घपला मामले से ताल्लुक रखने वाले नाजायज तौर पर रकम वसूल करने के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए अपनी गिरफ्तारी के साथ ही ट्रायल कोर्ट के जरिए उन्हें ईडी की तहवील में देने से मुतालिक रिमांड ऑर्डर को चैलेंज किया था। जस्टिस स्वर्णाकांत शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद उन्हें रिमांड पर देने के अपने फैसले को बरकरार रखा, ताकि ईडी मतलूबा मवाद गवाहों के बयानात हासिल कर सके और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के इस बयान को साबित कर सके कि केजरीवाल को गोवा इंतखाबात के लिए रकम दी गई थी। आम इंतखाबात से पहले गिरफ्तारी के वक्त को चैलेंज करने से मुतालिक केजरीवाल के दलाइल पर अदालत ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से किसी किस्म की बददयानी की अदम मौजूदगी में गिरफ्तारी के वक्त कोई अहमियत नहीं है। जनाब केजरीवाल इस वक्त अदालती तहवील में हैं। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 6 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया था, जिसमें बाद में मजीद 4 दिन की तौसीह कर दी गई थी। 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया था। आज बीजेपी ने दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जेल में बंद दिल्ली के वजीराला अरविंद केजरीवाल की उस उजरदारी को मुस्तरद किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की सख्त सरजनिश की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। नई दिल्ली में अखबार नवीसों से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का अड़ियल रवैया तार तार हो गया है। उन्होंने कहा कि जनाब केजरीवाल का जाती तौर पर ईमानदार होने का किरदार भी हकायक और सबूतों से तार तार हो गया है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अरविंद केजरीवाल को भी पार्टी लीडर संजय सिंह की तरह अदालत उज़्मा से राहत मिलेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बीआरएस की लीडर के कविता की अदालती तहवील 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वो दिल्ली की आबकारी पॉलिसी घपले से मुतालिक कालेधन को जायज बनाने के एक मामले में तहवील में है। कल दिल्ली की एक अदालत ने कविता को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया था। कविता मुबैना तौर पर उस साउद ग्रुप की अहम मेंबर हैं जिस पर इल्जाम है कि उसने कौमी राजधानी में शराब के लाइसेंसेस का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरों को 100 करोड़ रूपये दिए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स रिहाइश से कविता को गिरफ्तार किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बैंक कर्ज के धोखाधड़ी मामले में 52 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत की 1,807 एकड़ अराजी को अबूरी तौर पर कुर्क कर दिया है। कौमी तहकीकती एजेंसी एनआईए ने अटारी मुनशियात जब्तगी मामले के कलीदी मुलजिम, जिसकी शिनाख्त हरविंद सिंह के तौर पर की गई है, गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय कस्टम हुकाम ने अप्रैल 2022 में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 102 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन जब्त की थी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू होम्योपैथी से मुतालिक एक 2 रोजा सिम्पोजियम का इफ्तिताह करेंगी। इसका इनेकाद नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में होम्योपैथी के 2024 के आलमी दिन के मौके पर किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर ने फलस्तीनी अथॉरिटी की उस दरखास्त को नए रुकन के दाखिले से मुतालिक कमेटी के सुपुर्द कर दिया है जिसमें फलस्तीन ने सलामती काउंसिल का एक मुकम्मल रुकन बनने के लिए कहा था। माल्टा की अक्वामे मुत्तहिदा की सफीर वेनिसा फ्रेजियर ने कमेटी के सामने तजवीज रखी है कि इस दरखास्त पर गौर खोज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस दरखास्त पर तबादले ख्याल इस महीने किया जाएगा। अगर इस साल के आखिर तक दर्जा हरारत में कोई कमी वाकई नहीं हुई तो आबो हवा की तब्दीली गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो सकती है। नासा के खलाई मुतालियात के गोडर्ड इदारे के डायरेक्टर गोविन शिमित के मुताबिक अगर इस मौसम गर्मा के आखिर तक शिमाली ओकियानूस या कहीं और रिकॉर्ड तोड़ देने वाला दर्जा हरारत वाकई होता है तो यह गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये वार्निंग इन आदादोशुमार की बुनियाद पर की गई है कि मार्च 2024 रिकॉर्ड के मुताबिक गर्म तरीन साल रहा है जिसमें पिछले साल जून से अब तक हर महीने लगातार ये रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत रहा है। यूरोपीय यूनियन और भारत ने आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की टेक्नोलॉजीज के शोबे में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए मिलकर काम करने से मुतालिक एक तकरीब के सिलसिले का आगाज किया। तकरीब का मकसद साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के शोबे में यूरोप और भारत के छोटे और औसत दर्जे के कारोबारियों के दरमियान तआवुन में इजाफा करना है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में बेल्जियम की वजारत खारजा की सेक्रेटरी जनरल थियोडोर गेंजिस से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारत बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इक्तसादी और सियासी तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। बांग्लादेश के जहाजरानी के रियासती वजीर खालिद मोहम्मद चौधरी ने आज इस उम्मीद का इजहार किया है कि अगवा किए गए बांग्लादेशी बहरी जहाज एमवी अब्दुल्ला के अमले के 23 अरकान को इस महीने रिहा कराया जा सकता है। रियासती वजीर ने ढाका में अपने सेक्रेटरियट दफ्तर में अखबार नवीसों को बताया कि इस वक्त मुकम्मल सूरतहाल उनके कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि जहाजरानी का महकमा बाकायदगी के साथ अमले के अफराद से राबता रखे हुए है और वो तमाम लोग महफूज और सेहतमंद हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार और अंडमान व निकोबार जजाइर में शनिचर तक तेज हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह बैन अल-अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना लिए थे। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 183 रन का निशाना रखा है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत सीनियर बीजेपी लीडरों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियां और रोड शो मुनक्किद किए। डीएमके के लीडर एमके स्टालिन ने मदुरई में रैली की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लीडरों ने आसाम में अवामी जलसे किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की उजरदारी को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने मुबैना शराब पॉलिसी घपला मामले में ईडी के जरिए अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर ने फलस्तीनी अथॉरिटी की उस दरखास्त को नए रुकन के दाखिले से मुतालिक कमेटी के सुपुर्द कर दिया है जिसमें फलस्तीन ने सलामती काउंसिल का एक मुकम्मल रुकन बनने के लिए कहा था।